ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज पढ़ रहे हैं भागवत महापुराण से तीसरा स्कंध, इस अध्याय 31 का नाम है जीवों के गतियों के विषय में भगवान कपिल के उपदेश, श्लोक संख्या 8 और 9। अकल्प स्वांग चेष्टायाम शकुंत इव पंजरे तत्र लब्ध स्मृति दैवात् कर्म जन्म सदोद्भवम् अस्मरण दृग्गम अनुसाचाम। इस तरह शिशु पिंजरे के पक्षी के समान बिना हिले, चाहे इसके पहले का श्लोक मैं पढ़ लेता हूं, उल्वीना संवृत तस्मिन् अंतरिश्च बहिरावृत आस्ते कृत्वा शिर कुक्षौ भुग्न पृष्ठ शिरोधर। झिल्ली से लिपटा और बाहर से आंतों द्वारा ढका हुआ शिशु ऊपर में एक ओर पड़ा रहता है, उसका सिर उसके पीठ की ओर मुड़ा हुआ रहता है और उसकी कमर तथा गर्दन धनुषाकार में मुड़े रहते हैं। इसका अनुवाद, इस तरह शिशु पिंजरे के पक्षी के समान बिना हिले डुले रह रहा होता है। उस समय यदि शिशु भाग्यवान हुआ तो उसे विगत 100 जन्मों के कष्ट स्मरण हो आते हैं और वह दुख में आहे भरता है। भला ऐसी दशा में मन शांति कैसे संभव है? तात्पर्य, जन्म के बाद शिशु भले ही विगत जीवन के कष्टों को भूल जाए, किंतु जब हम बड़े हो जाते हैं तब श्रीमद्भागवत जैसे प्रामाणिक शास्त्रों को पढ़कर इतना तो समझ ही सकते हैं कि जन्म तथा मृत्यु के समय कितनी यातनाएं भोगनी पड़ती है। यदि शास्त्रों में हमारा विश्वास नहीं है तो अलग बात है, किंतु यदि ऐसे शास्त्रों के प्रमाण पर हमारा विश्वास है तो हमें अगले जन्म में इससे मुक्त होने की तैयारी करनी चाहिए। ऐसा इसी मनुष्य जीवन में संभव है। जो इस संकेतों की परवाह नहीं करता वह आत्मघात करता है। कहा गया है कि मनुष्य जीवन ही माया के अंधकार को या भवसागर को पार करने का एकमात्र साधन है। हमारे पास यह मनुष्य शरीर अत्यंत सक्षम नाव के समान है और गुरु ही इसका अत्यंत दक्ष कप्तान है। शास्त्रीय आदेश अनुकूल हवाओं के समान है। यदि इन सारी सुविधाओं के रहते हुए भी हम अज्ञान के सागर को पार नहीं कर पाते तो हम जानबूझकर आत्मघात कर रहे होते हैं। जब कुंभकर्ण मारा गया, इन बच्चों को सुला दीजिए अभी, देखिए वो सो रहे थे, उनका मोबाइल लगाए थे कब बजेगा, वो अलार्म लगाकर सो रहे थे, क्लास जब शुरू होगा तब बजना। जब कुंभकर्ण मारा गया तो निद्रा देवी भगवान राम के शरण में गई और कही प्रभु अब मैं कहां जाऊंगी, तो भगवान राम ने कहा जहां कथा होती है तुम वहां चले जाना। तो दिन भर नींद नहीं आती, जब कथा शुरू होती तो नींद आ जाती है। हरे कृष्णा। तो भगवान कपिल देव बड़ा ही सार गुढ़ बात यहां पर माता देहूति को बतलाए हैं और बहुत बड़े महान वैज्ञानिक सुखदेव गोस्वामी हम लोगों के सामने इसे प्रस्तुत किए हैं। किस प्रकार से जीव देह ग्रहण करता है, इस सब बातों को हम लोग सुनते आए हैं। ये जो दो श्लोक हैं क्रमशः, जीव जब देह ग्रहण कर लेता है तो किस गति में रहता है, किस परिस्थिति में रहता है, सुखदेव गोस्वामी उसका ग्राफिक डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, चैत्रिक विवरण कर रहे हैं। हम लोग देखे हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु बिल्कुल, उनका फोटो कहीं कहीं डॉक्टर के यहां पर या बोर्ड पर, तो बिल्कुल ना सिर जो है उनके पेट में या घुटनों तक झुका रहता है, असहाय परिस्थिति में पड़े रहते हैं। वही बात यहां पर सुखदेव गोस्वामी बतला रहे हैं कि किस प्रकार से वह जीव जब देह ग्रहण करता है तो झिल्लियों से लिपटा रहता है, आंतों से ढका रहता है, बंधा रहता है, असहाय अवस्था में रहता है और उसका सिर मुड़ा हुआ पेट की ओर रहता है। असहाय वह जो जीव है, कहते हैं अकल्प, मतलब सुकल्प मतलब मजबूत और अकल्प मतलब असहाय, बिना जिसमें दम न हो, बिना शक्ति का असहाय। स्वांग चेष्टाया, प्रयास तो बेचारा करता है, उसे विभिन्न प्रकार के उसके सगे संबंधी जो जन्म लेते हैं उसे विभिन्न प्रकार से कष्ट देते हैं, दुख देते हैं। मैं शुरू में ही कहा था मोबाइल को बंद कर लीजिए आप लोग, सुबह सुबह मोबाइल लाने की जरूरत क्या है, बिना खाए रह जाएंगे लेकिन मोबाइल बिना जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो यहां पर उस असहाय जीव का उपमा दिया गया है पिंजड़े में बंद उस पक्षी से, जिस पक्षी का पंख अभी बाहर ना निकला, छोटा पंख हो, शकुंतः, वह पक्षी जिसका पंख न निकला हो, असहाय हो और वे पिंजड़े में बंद हो, एक तो असहाय है और पिंजड़े में बंद, इसलिए शकुंत कहा गया वैसे पक्षी को। तो एक तो ये जीव असहाय है, मतलब बहुत छोटा है, उसे शक्ति नहीं है, और दूसरा वो बंधा हुआ है झिल्लियों से, आंत से इत्यादि से। वैसे दुख के परिस्थिति में जीव को स्मृति आती है। एक दिन भक्ति विनोद ठाकुर वैष्णव प्रभु कहा है, उनको बोला था वैष्णव भजन गीत चाहिए बंगाली में, उसमें एक भजन है, भूलिया तुम्हारो संसारे बसिया पाए नाना विध व्याथा। हे भगवान, मैं आपको भूल करके इस संसार में आया और विभिन्न प्रकार का दुख भोग रहा हूं। संसार में आते ही दुख शुरू हो जाता है। जिस दिन जीव मां के घर में आता है और जब देह ग्रहण करता है तब से ही दुखों का व्रण यहां पर किया जाता है। इसीलिए भगवान मुफ्त में नहीं कह दिए हैं कि यह संसार दुखालय अमर शाश्वतम है, शुरू से ही दुख शुरू हो जाता है, जन्म से पहले और मरते दम तक दुख का ही सामना करना पड़ता है। यहां पर दैवात यहां पर कहा गया है शब्द, स्मृति जगती है, यादगारी आती है। कैसे आती है? दैवात, भगवान के कृपा से, परमात्मा के कृपा से। भगवान समस्त जीव के साथ में परमात्मा के रूप में रहते हैं, परमात्मा को गाइड करने के लिए, सही क्या है, गलत क्या है। तो परमात्मा के कई कार्य हैं, उन कार्यों में से एक कार्य है, जैसा कि भगवत गीता में हम लोग सुने हैं कि भगवान कहते हैं कि मुझसे ही स्मृति आती है, ज्ञान अपोहनम च, स्मृति आती है और ज्ञान को मैं चुरा लेता हूं। ये ज्ञान भगवान देते हैं, मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहनम च। विद्या के 12 अंग हैं, उसमें से प्रथम जो अंग है वह कहलाता है स्मृति। जैसे मैं उदाहरण दिया करता हूं, किसी व्यक्ति के पास चाबी, हमारे पास चाबी गुच्छा कम ही है, 3-4 लोग हैं, टेम्पल कमांडर के पास ज्यादा होगा, 20-25 चाबी होगा। तो चाबी है और चाबी कहीं हम लोग भूल गए हैं, रख दिए, छूट गया है। अब उसकी स्मृति नहीं है कि चाबी कहां है, ज्ञान है कि उस गुच्छे में कितने चाबी हैं, घर का चाबी है, तिजोरी का चाबी है, कार का चाबी है, जो जो चाबी है वो सब याद है, वो ज्ञान है कि कौन कौन उसमें चाबी है, यहां तक उसका जो ये रिंग है वो भी कैसा है, वो भी सब याद है, लेकिन कहां चाबी है ये याद नहीं। वह है विस्मृति, और वह जो स्मृति है वो भगवान की कृपा से आती है। और जितना ज्ञान है हम लोगों कठिन परिश्रम से आता है, लेकिन स्मृति जो है वो भगवान कृपा से आती है। वो असली चाबी है ज्ञान का दरवाजा खोलने के लिए। यदि स्मृति न हो तो जानते हुए भी कभी कभी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, कहते भाई मैं आपको देखा हूं, आपका नाम भी जानता हूं, लेकिन कहा क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, खोजते रहते हैं। ज्ञान है कि मैं देखा हूं उस व्यक्ति को, जानता हूं, नाम भी जानता हूं, लेकिन स्मृति नहीं है। बुढ़ापे में ज्यादा इसको फेस करना पड़ता है, स्मृति कम होने लगती है बुढ़ापे में। तो भगवान के कृपा से, लेकिन भगवान का जो भजन करता है उसकी स्मृति कभी कम नहीं होती है। उसकी स्मृति ऐसी बनी रहती है, ऐसी बनी रहती है, ऐसी बनी रहती है कि जन्म लाभ परापुंसा अंत नारायण स्मृति। उसकी स्मृति बनी रहती है कि अंत नारायण स्मृति, अंत में नारायण का स्मृति हो जाए। सब ज्ञान प्राप्त है, गीता का, भागवत का, चैतन्य चरितामृत का, वृंदावन के, ब्रजभर के कोने कोने का सब ज्ञान प्राप्त है, लेकिन यह भगवान की कृपा नहीं होगी तो भगवान का स्मरण उस समय नहीं होगा। तो उनके कृपा से, और कृपा कब प्राप्त होता है, जब भगवान देखते हैं कि भक्त लोग उनको प्रसन्न करने के लिए प्रयत्नरत हैं। जैसे एक कार्तिक का महीना है, कार्तिक महीने में हम लोग भगवान दामोदर का लीला सुने हैं, जब यशोदा मैया डंडा हाथ में लेकर के और कृष्ण को खदेड़ रही थी, कृष्ण के पीछे में दौड़ रही थी, कृष्ण भाग रहे थे, मैया डंडा ली थी लेकिन पकड़ नहीं पा रही थी मैया। कृष्ण को कितनी बार मैया पकड़ ली थी लेकिन इस बार वो पकड़ नहीं रही थी। आचार्यगण कहते हैं कि दो कारण था, एक कारण था कि मैया के हाथ में डंडा था, और वो डंडा क्या है, हमारा अहंकार है, हम लोग अहंकार रूपी डंडा से कृष्ण को पकड़ना चाहेंगे तो कृष्ण कभी पकड़े नहीं जाएंगे, अहंकार से कृष्ण परे हो जाते हैं। मैया दौड़ती गई मैया था हट्टी कट्टी थी मलाई पिस्ता खाई थी, थक गई बेचारी बैठ गई, वो डंडा फेंक दिया। जब डंडा फेंक दिया तो भगवान आए। तो दो कारण था, एक कारण यह था कि हाथ में डंडा ली थी और दूसरा वह भगवान के पीठ को देख रही थी। तो भगवान के पीठ में अधर्म निवास करता है, तो अधर्म से कोई भगवान कैसे पकड़ सकता है? धार्मिक होना पड़ेगा भगवान पकड़ने के लिए। और आप माला जप करना बंद कर दोगे। माला जप करने का ही मतलब है सुनना और कथा सुनने का ही मतलब है सुनना। तो ये इन अटेंटिव चैंटिंग हो गया, ये अपराध हो गया। हाँ जी, मैं क्या बोल रहा था, मेरी भी स्मृति खत्म हो जाती है बार बार। नहीं, जो जहां मैं छोड़ा था उतना स्मृति खराब नहीं हुई है, लेकिन जहां छोड़ा तो वहीं बताओ आप लोग। हां, भगवान के पीठ में अधर्म निवास करता है और अधर्म से भगवान को कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। अरे, भगवान का दर्शन तो उनके चरण से लेकर के मुखारविंद तक, सामने दर्शन पीठे से दर्शन होता है। तो जब जसोदा मैया ने डंडा फेंक दिया तब भगवान का कोई बात नहीं, मैया एक तरफ आ रहे थे। अब मैया जब कृष्ण को पकड़ ली, अब मैया के मन में आ गया कि वहां पर कई एक वार्ता हुआ है, कवि कर्णपुर आनंद वृंदावन चंपू में इसका वर्णन किया गया है। जब यशोदा मैया से और कृष्ण से वार्ता हो रही थी तो बात बात में यशोदा मैया ने उनके मरकट बंधु कहा, बंदरों का भाई। तो कृष्ण भी त्रिपाठी गोस्वामी कहते हैं कि जब यशोदा मैया कहे कि तुम चोर है, तो कृष्ण ने कहा कि मैया इसका मतलब कि हमारे ननिहाल वाले सब चोरे थे ना, यानी आप भी चोर की बेटी हो ना। कृष्ण भी बात बनाने में कम नहीं थे, क्योंकि जो बच्चे होते हैं, जो बेटा होता है, उस पर ननिहाल का असर पड़ता है, टप्पा लगता है। और जब बेटी होती है उधर, आप लोग जानते हैं इस बात को ना, बाप मां तरफ का, बाप की तरफ का। तो कृष्ण ने इस प्रकार से कहा। और जब मरकट बंधु तो कहे मैया तो बंदर लोग कहां रहते हैं? तो मैया कहे जंगल में रहते हैं। तो भगवान बड़े उदास मन से, तब ठीक है, तो मैं भी जंगल में चला जाता हूं। जब भगवान ऐसा कहे तो यशोदा रानी को शंका हो गया कि कृष्ण हठीला है, शायद चला भी जाएगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब मैं कृष्ण को बांध देती हूं, शाम का समय भी हो गया था ऐसे भी, और जब बांध देती हूं उसके बाद घर का जो काम है सब खत्म कर करके और बाद में खोलूंगी और इसे माखन खिलाऊंगी। तो मैया रस्सी लेकर के आई। मैं कृपा शब्द पर बोल रहा हूं, अभी आगे आएगा। मैया रस्सी लेकर के आई। रस्सी बड़ा कठोर होता है, रस्सी का काम है बांधना, और बंधन बड़ा कठोर होता है। कई एक प्रकार का बंधन होता है, किसी को स्त्री और पुरुष का बंधन हो गया, किसी को धन का बंधन हो गया, किसी को नाती पोते का बंधन हो गया, घर गृहस्थी का बंधन हो गया, रुपए पैसे का बंधन है, और सब बंधन जो है वो कठोर होते हैं। बंधन कठोर होता है, रस्सी का काम है बांधना, रस्सी बड़ा कठोर। लेकिन जब यशोदा मैया रस्सी को लेकर के कृष्ण के पास आई तो कृष्ण के संस्पर्श से ही वो रस्सी सॉफ्ट हो गया, कोमल हो गया। और जो कोमल हो जाता है फिर उसमें अहंकार नहीं रहता है। जो कोमल हो गया, जिसका दिल द्रवित हो जाता है कृष्ण नाम के द्वारा, उसमें अहंकार नहीं रहता है, वह अमानिना मान देना हो जाता है। तो वह कठोर रस्सी भी सॉफ्ट हो गया और वह बांधना नहीं चाहता था। दूसरा रस्सी मैया लाई तो इस रस्सी में बांधी। जब इस रस्सी का संबंध हुआ तो तो जो केवी भक्त बन गया था तो इसने क्या किया, उसको भी भक्त बना दिया, तो वो भी सॉफ्ट हो गया। तो जितना रसिया, यही यही जो कृष्ण उन्मत्त हो जाता है, कृष्ण उन्मुख हो जाता है, कृष्ण परायण हो जाता है, वह सॉफ्ट हो जाता है। वो चाहता है कि संसार के सब लोग भक्त ही बन जाए, उसकी यही कामना होती है, और इसी प्रयास में वह लगा रहता है कि लोगों को मैं भक्त बनाऊं, भक्त बनाऊं, भक्त बनाऊं। भक्त बनाने के लिए देश विदेश में परिभ्रमण करता रहता है, भक्त बनाने के लिए। तो वह जितनी रसियां आई सब भक्त बनती गई, और कोई कृष्ण को बांधना नहीं चाहता। जब भक्त बन गए तो कृष्ण कहां बांधेंगे, नहीं बांधना चाहते थे, कृष्ण का पूजा करना चाहते थे। एक गोस्वामी कहते हैं कि नहीं, ये जो रसियां थी वो बांध सकती थी, लेकिन भगवान की कई एक शक्तियां हैं, भगवान सबको बांध कर रखे हैं, भगवान का स्वभाव है कि वे मुक्त हैं। जन्मादस्य तन्वाद यतरत चार्थी स्वभिज्ञ स्वराट, भगवान स्वराट हैं, वो किसी के बंधन में नहीं जाते हैं। तो ऐश्वर्य शक्तियां बांधने नहीं देना चाहती थी, लेकिन यशोदा मैया भक्ति शक्ति से बांधना चाहती थी। तो यहां पर भक्ति शक्ति और ऐश्वर्य शक्ति की लड़ाई हो रही थी, बड़ा टफ कंपटीशन था, कोई आसान नहीं था। तो भगवान ने ईश्वर शक्ति कहा, देखो तुम्हारा यहां पर दाल नहीं गलेगा, ये ब्रज है, तू द्वारिका जाओ। वो ईश्वर शक्ति सोचा, अरे हमारे पति को ये कौन होती है बांधने वाली, कैसे बांध सकते हैं हमारे पति को। तो भगवान ने कहा तुम यहां मत रहो, द्वारिका जाओ, जब मैं द्वारिका में आऊंगा तो अपन दादागिरी वहां चलाना, यहां तुम्हारा नहीं चलेगा, यहां पर यशोदा रानी का ही चलेगा, भक्ति शक्ति का। तब भगवान की एक शक्ति आई जिसका नाम है कृपा शक्ति, कृपया। तो भगवान कृपा शक्ति से बांधे गए, नहीं तो और कोई साधन नहीं था। तो भगवान की कृपा, जब कृपा होती है भगवान की, तभी हम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे यशोदा मैया कमर कस कर करके भगवान का सेवा करने चली थी, और कमर कस कर करके उन्होंने दृढ़ निश्चय किया था कि आज मैं कृष्ण को बांध कर रहूंगी, सब ग्वाल बाल लोग रो रहे थे और कह रहे थे कि मैया कृष्ण का इसमें बिल्कुल गलती नहीं है, हम ही लोगों को भूख लग गया था, और हम ही लोग आ करके और कृष्ण से कहे, तो कृष्ण ने हम लोगों के लिए माखन चोरी किया है, तो गलती हम लोगों का है, यदि आप मारना चाहती हो, बांधना चाहती है, तो हमको बांधो, आप इनको मत बांधो, कृष्ण को मत बांधो। मैया से बहुत अनुनय विनय ग्वाल बाल लोग कर रहे थे, मैया को गुस्सा आ गया, कहा तुम जाओ यहां से, अपने अपने घर जाओ। मैया कभी किसी ग्वाल बाल को इस प्रकार से नहीं बोली थी, पहली बार मैया जोर से डांटी, उनके बजाओ तो अपने अपने घर जाओ। सब लड़के गए अपने घर, जाकर के अपने मां से रो रो कर कहने लगे। सब गोपियां आ गई थी और यशोदा रानी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, हमारे बच्चे खाना पीना छोड़ दिए, स्ट्राइक पर चले गए हैं, खाना पीना बंद कर दिए हैं, उपवास कर रहे हैं, अब यशोदा रानी से छोड़ दो। यशोदा ने कहा कि नहीं, आज मैं इसे बांध कर रहूंगी, बहुत चोरी करता है, आज इसे दंड देकर रहूंगी। तो मैया की इच्छा थी कि कृष्ण को मैं बांध कर रहूं, जब अटल इच्छा हो गई, विश्वास पूर्ण इच्छा हो गई, तब कृष्ण बांधे गए। हम लोगों को भगवान में श्रद्धा है, लेकिन भगवान में विश्वास नहीं है, विश्वास बड़ा कम है, विश्वास बड़ा कम है। श्रद्धा है, भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, वृंदावन आते हैं, परिक्रमा करते हैं, और जब भगवान कभी परीक्षा लेते हैं तो श्रद्धा डिग जाता है, लेकिन जब विश्वास रहेगा तो कितना भी बड़ा से बड़ा परीक्षा क्यों न हो, कुछ नहीं होगा, विश्वास की कमी है। तो मैं कृपा का बात कर रहा था कि यशोदा मैया अटूट भाव से, अनन्य भाव से कृष्ण को बांधना चाहती थी, तब कृष्ण की कृपा हुई। वैसे ही यहां पर देखिए, जीव को बहुत दुख हो रहा था। भगवान का स्मरण दुख में ज्यादा होता है, इसलिए माता कुंती सबसे बड़ी इंटेलिजेंट हैं, और उन्होंने कहा विपद संतु तस्यात् तत्र तत्र जगत गुरु, विपत्ति दीजिए विपत्ति दीजिए विपत्ति दीजिए। कृष्ण का स्मरण जितना दुख में होता है उतना सुख में नहीं होता है। दुख में असहाय रूप से हम लोग कृष्ण का चिंतन करते हैं। तो यह जीव असहाय था, अकल्प, कोई सहारा नहीं था, कोई सहयोग नहीं करने वाला था, और बहुत दुखी था। तब भगवान का वो कृपा पात्र हुआ। तत्र लब्ध स्मृति दैवात्, भगवान के कृपा से दो चीज हुआ। क्या हुआ? एक उसे स्मृति आया। किस चीज का स्मृति आया? सौ जन्मों तक जो भी कर्म, कुकर्म, अकर्म, विकर्म जो भी किया था वो सब रिले हो रहा था। दुख की बात है कि हम लोगों के सामने हमारे कर्म फल दिखाई नहीं पड़ते, भगवान उसको हटा दिए हैं, क्योंकि हम एंजॉय करना चाहते हैं, हम आनंद भोगना चाहते हैं, इसलिए भगवान हटा दिए हैं। यदि स्मृति आ जाए तो हम तुरंत भक्त बन जाएंगे। जैसे अजामिल, अजामिल के सामने ये जमदूत और विष्णु दूत लोग बात कर रहे थे। अजामिल देख रहा था कि विष्णु दूत कौन है, जमदूत कौन है, इनका व्यवहार कैसे हो रहा है, और यह सब देखते देखते उसका ज्ञान उत्पन्न हो गया, और बाद में बहुत पश्चाताप किया कि हाय हाय मैंने क्या किया। सब उसका कर्म फल वहां दिखाई पड़ रहा था। तो ये गीता भागवत हम लोगों के कर्म फल को दिखाता है, लेकिन हम लोग इतने कामातुर हो गए हैं, इंद्रिय तृप्ति के बस में इतने फंस गए हैं कि हम लोग भूल गए हैं। हरि हरि विफले जनमो गुआयनु, मानुष जन पाइया राधा कृष्णा भजिया, जानिया सुनिया विस्कायनु। व्यर्थ में हम लोग जीवन बिता रहे हैं, जो मनुष्य जन्म मिला हुआ है भगवान का भजन करने के लिए, भजन ना करके कामातुर हो करके विषय वासना का उपभोग करने के लिए, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। दिनानुदिन मोरालिटी गिरती जा रही है, दिनानुदिन आदमी का वैल्यू जो है वो खत्म होते जा रहा है। हमारे एक मित्र बता रहे थे शेक्सपियर का एक कहावत, हम लोग सुने थे कि महात्मा गांधी कहते, कोई कहा था, अंग्रेजी में कहते हैं कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, राइट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट। कम से कम उन दिनों तक लोगों की बुद्धि थी भाई कैरेक्टर बना करके रखो। आप लोगों को मालूम है आजकल सब कुछ उल्टा हो गया। आजकल कहते हैं कैरेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, पेपर में डेली आता है, उसने उसके उसके बीवी के साथ भाग गया, वो उसके लड़के को लेकर चला गया, वो ये किया वो किया, उसका मर्डर किया ये किया, अपने बेटी को रेप कर दिया बाप ने, ऐसे ऐसे मतलब बहुत डेली। कैरेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ वेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। एक कलयुग हो गया, वेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, एक कलयुग हो गया। धन के पीछे लोग दौड़ते हैं, भूल जाते हैं। पता नहीं आजकल के लोग कहते हैं कि नहीं, लेकिन पहले हम लोग इस बात को बहुत सुनते थे हमारे दादा गाया करते थे एक भजन, उस भजन में कहते थे कि हे मन, जब तुम मां के गर्भ में था तू प्रतिज्ञा किया था कि बाहर जाकर के भजन करूंगा, और यहां कर भूल कैसे गया। आज कहते हैं आजकल लोग ये भजन नहीं गाते हैं। आजकल सुबह उठते हैं उठते चाय 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 चिल्लाने लगते हैं, बहू चाय लाओ है। पहले लोग उठ करके भजन करते थे और ऐसे ही सैद्धांतिक भजन गाते थे है। अपने को कोसते थे कि भले उसका मतलब समझे या ना, गाते थे बेचारे कम से कम कि मां के गर्भ में हम लोगों ने भगवान से प्रार्थना किया था। भक्ति विनोद ठाकुर इसी बात को इस सॉन्ग में गाए हैं, भूलिया तुम्हारो संसार वसिया पाए नाना विधि बैठा। हे प्रभु, एक दिन आपका दर्शन हुआ और मैं आपसे प्रार्थना किया कि आप मुझे बाहर निकालो, मैं यहां बहुत दुखी हूं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं लेकिन कह नहीं पाता हूं, बाहर निकालिए, और बाहर आकर के अपने दुख का सब कथा आपको सुनाऊंगा। लेकिन बाहर आने के बाद जनक और जननी है और कैसे, एनीवे बाप मां के प्यार में मैं ऐसा बन गया, सगे संबंधी जो आते थे सब टिटकारियां मारते थे, हमको हंसाना चाहते थे, खिलाना चाहते थे, कोई नया नया खिलौना लाता था, मिठाइयां लाता था। इस प्रकार से मैं समझने लगा जीवन कितना अच्छा है। मैं आया था आपसे कहने के लिए अपने विपत्ति को, लेकिन मैं दिनानुदिन भूलते गया। थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ तो मैं मित्रों के साथ स्कूल में गया, पढ़ने लगा, कुछ पढ़ा, पढ़ने के बाद डिग्री प्राप्त किया, और डिग्री किस लिए, विद्यारो गौरव भ्रमी देशे देशे धन उपार्जन करी। विद्या के अहंकार में डिग्री को लेकर के इंडिया, अमेरिका, पाकिस्तान, कहां कहां, इंग्लैंड, सब जगह घूमते रहा। क्यों, धन उपार्जन करी, धन उपार्जन करने के लिए। और धन किस लिए, सगे संबंधियों का सेवा करने के लिए, पालन करने के लिए। कहते बैठा कहा कौन भगत विनोद, अब तो मैं बुढ़ा हो गया हूं, अब मैं किसे कहने जाऊं, सब धन छीन लिए, हमारे पास कुछ भी नहीं रह गया। वास्तव में बुढ़ापा में जो भजन नहीं करता है उसका सब धन छीन जाता है। जो बैंक बैलेंस है वही धन नहीं है, वो बैंक बैलेंस रूपी धन तो छीन ही जाता है, शरीर धन जो है वो भी छीन जाता है। आंख में देखने की शक्ति नहीं रह जाती है, कान में सुनने की शक्ति नहीं रह जाती है, स्मरण शक्ति नहीं रह जाती है, ज्ञान नहीं रह जाता है, पैर में शक्ति नहीं है, हाथ में शक्ति नहीं है। ये धन पुत्र परिवार इत्यादि को धन मानते हैं, लेकिन पुत्र परिवार भी छीन लिए जाते हैं। जो पत्नी है वो भी नाते नाती और पोते के द्वारा छीन ली गई है, वो पत्नी भी नहीं रह गई है। बेटा जो है अपने पत्नी के द्वारा छीन लिया गया है, अपने पास कुछ भी नहीं है। बड़ा विपट परिस्थिति होती है बुढ़ापे की परिस्थिति, सब धन खत्म हो जाता है। और भक्ति रूपी जो धन था उसको हम प्राप्त किए ही नहीं है। तो सही में लोग कहते तो हैं केवल कि बुढ़ापा में भजन करना चाहिए, लेकिन चिंता इतना सताता है कि बुढ़ापे में भजन नहीं हो पाता, भजन नहीं हो पाता। तत्र लब्ध स्मृति दैवा कर्म जन्म सतत भवम, भगवान की कृपा से दो चीज होता है, उस दुख के परिस्थिति में भगवान का दर्शन होता है और भगवान की कृपा से हमें सब कुछ दिखाई पड़ता है कि मैंने कैसा कैसा कर्म किया था। और उस कर्मों का स्मरण करते हुए जीव गहरा सांस लेता है कि हाय हाय, मैं ऐसा कर्म किया हूं, और मैं कौन सा कार्य करूं जिससे हमें मन शांति की प्राप्ति हो। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य दिए हैं कि ठीक है हम लोग भूल गए हैं, यहां आकर के उस बात को भूल गए हैं कि मां के गर्भ में कैसे हम लोग दुख भोग रहे थे, सातवें महीने में थोड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ भगवान की कृपा से, और हम लोग प्रतिज्ञा के लेकिन आज भूल गए हैं, ठीक है भूल गए हैं, लेकिन साधु महात्मा गण इतने दयालु होते हैं कि भूले जीव को याद दिलाने के लिए आते हैं, वैदिक शास्त्रों का रचना करते हैं। ये प्रामाणिक जो शास्त्र है, प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु जब हम बड़े हो जाते हैं तब तो श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक शास्त्रों को पढ़कर इतना समझ सकते हैं कि जन्म तथा मृत्यु के समय कितनी यातनाएं भोगनी पड़ती है। पांचवा स्कंद पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि मृत्यु के समय क्या यातना भोगना पड़ता है। सुखदेव परीक्षित महाराज पांचवा स्कंद का कथा सुन लिए तो उनका रोंगटा खड़ा हो गया, और अपने लिए नहीं समस्त प्राणियों के लिए बड़े दुखी दुखी भाव से पूछ रहे थे कि इन प्राणियों का कैसे उद्धार हो सकता है, कैसे उद्धार हो सकता है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं के चित केवलया भक्तया वासुदेव परायण, यदि किसी प्रकार से केवला भक्ति कोई करे, भगवान वासुदेव का शरण ग्रहण कर करके भगवान का भजन करे तो उसी से उद्धार हो सकता है। और इसी प्रकार से यहां पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो शास्त्र हैं वो बतलाते हैं दुख क्या है, और रेमेडी भी शास्त्र बताते हैं। भौतिक संसार से, भौतिक संसार के दुखों से कोई पार होना चाहता है तो दो ही साधन है, दो साधन है। गोविंद दास कविराज कहते हैं भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभया चरणारविंद, दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तरह ए भव सिंधुरे। दो ही चीज संसार में दुर्लभ है, एक मनुष्य का जन्म और दूसरा सत्संग, दो चीज दुर्लभ है। इन दोनों में भी सत्संग ज्यादा दुर्लभ है, मनुष्य जन्म भी उतना दुर्लभ नहीं है, हालांकि दुर्लभ है लेकिन सत्संग उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। इसलिए सत्संग को श्रेष्ठ माना गया है। नव जोगेंद्रगण महाराज निमि जब नव जोगेंद्र से मिले तो उन्होंने कहा दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण मंगलम तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभो मानुषो देहो, मनुष्य का देह तो दुर्लभ है, तत्रापि दुर्लभम मन्ने उसमें भी दुर्लभ मानता हूं मैं। हम लोग मानते हैं क्या है, वैकुंठ प्रिय दर्शनम, वैकुंठपति नारायण के भक्तों का दर्शन दुर्लभ है, सत्संग दुर्लभ है। यदि सत्संग रहेगा तो दुर्लभ से दुर्लभ, दुर्लभतर या दुर्लभतम वस्तु भगवान जो है उनको भी हम प्राप्त कर सकते हैं। सत्संग से दो चीज होता है, एक माया का असर नहीं पड़ता है और दूसरा भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान का संग होता है, माया का असर नहीं पड़ता है। अभी मैं अमेरिका दो महीना था, वहां कैलिफोर्निया में एक फॉरेस्ट है जिसे रेड वुड फॉरेस्ट कहा जाता है, वो लाल पेड़ का, लाल पेड़ का जंगल है। यहां के जैसे ये रंगा हुआ है, ये लकड़ी रंगा हुआ है ना, रंग करके लाल किया गया है, वो नेचुरली रेड होता है, रेड वुड फॉरेस्ट का नाम है। और वहां पेड़ जो हैं इतने मोटे पेड़ हैं कि करीब 25 आदमी हाथ से हाथ लेकर के ऐसे पकड़ना चाहे, 25 आदमी यानी इस हॉल से भी कहीं मोटा वो पेड़ है, तो भी हाथ में नहीं आता है। और वह पेड़ हजारों साल तक जीते हैं। लेकिन आप लोगों को मालूम है जब इतना बड़ा पेड़ है तो स्वाभाविक है कि उसका जड़ भी बहुत बड़ा होगा, इतना बड़ा पेड़ है, बिल्कुल नहीं, उसका जड़ नीचे नहीं जाता है, उसका जड़ चारों तरफ फैलता है, ऊपर है बिल्कुल। तो कोई कह सकता है, जब जड़ इधर फैलता है, इतना लंबा चौड़ा इतना मोटा पेड़, इतना आंधी तूफान आता था, गिर क्यों नहीं जाता है? और गिरता भी नहीं है। अमेरिका में बहुत आंधी तूफान आता है, अभी बहुत बड़ा आंधी आया कि न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी को बूम, 12 फीट पानी मैनहट्टन में, न्यूयॉर्क शहर में पानी बह रहा था। 80 माइल यानी 120 किलोमीटर के स्पीड से तूफान आया था। जैसे हाईवे पर 120 किलोमीटर गाड़ी चलाओ और कोई बीच में आया तो क्या होगा, उसका कचमा निकल जाएगा है? तो उस स्पीड से एक तूफान आया था, इसका सैंडी नाम है, एक तूफान का सैंडी तूफान आया, बड़े बड़े बिल्डिंग को तोड़ दिया। तो इतना बड़ा तूफान आने के बाद भी वो रेड वुड ट्री पर कोई असर नहीं पड़ता है, जिसका जड़ भी नीचे नहीं गया है कल। बस पता है क्यों? क्योंकि वह जो वृक्ष है उसका जो जड़ है एक दूसरे से बंधा रहता है, इतना जोर से बंधा रहता है, इतना जोर से बंधा रहता है, कितना भी बड़ा से बड़ा आंधी तूफान आए कुछ भी नहीं होता। यही है सत्संग। हम लोगों को भी वैष्णवों से ऐसे ही बंधे रहना चाहिए, वैष्णवों के शरण में रहना चाहिए, गुरु के शरण में रहना चाहिए, वैष्णवों के शरण में रहना चाहिए। और जब हम बंधे रहेंगे एक दूसरे से सत्संग के द्वारा, हरि कथा सुन करके, सेवा कर कर करके, हरि कीर्तन के द्वारा यदि बंधे रहेंगे तो माया का बड़ा से बड़ा हैरिकेन या सैंडी या साइक्लोन कुछ भी आए, हम लोगों पर बिल्कुल कुछ असर नहीं पड़ेगा। और दूसरा सत्संग का फायदा, जैसे वो वृक्ष हमेशा खड़ा रहता है, वैसे ही हम लोग आगे ही बढ़ते जाएंगे। विपत्तियां आएंगी लेकिन विपत्तियों से हम घबराएंगे नहीं, क्योंकि संग है ना, डर नहीं लगा। अकेला रहता डर लगता है, जब कुछ लोग रहेंगे तो डर नहीं लगता है। सत्संग बहुत जरूरी है। तो यहां पर ये दोनों चीज तात्पर्य प्रभुपाद जी बताए हैं भागवतम के ग्यारहवें स्कंद का श्लोक कोट कर करके, निर्देह आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्रम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम। कहते निर्देह, निर्देह मतलब नर का देह, निर्देह आद्यम सुलभम सुदुर्लभम। आज हम लोगों को प्राप्त है मनुष्य का देह, लेकिन भैया जब पैर फिसल गया एक बार तो मिलना बड़ा मुश्किल है। सुलभम सुदुर्लभम, सुदुर्लभ वस्तु हमको प्राप्त है आज, एक तो यह अर्थ हुआ, और दूसरा कहीं पैर फिसल गया तो मिलना बड़ा मुश्किल है। कोटा बड़ा कम है, 4 लाख की जोनी है ना, 84 लाख में 80 लाख जोनी तो अलग अलग है, तो कम कोटा है तो सबको नहीं मिल पाएगा। सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम। कह बजे तक कथा चलती है, खत्म कर दिया जाए? प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम। प्लवम मतलब नौका, और सुकल्प यहां पर अकल्प आया हुआ है, वहां सुकल्प, सुकल्प मतलब बहुत मजबूत। ये मनुष्य देह जो है ये दुर्लभ वस्तु है, और एक बहुत सुंदर नौका है इस संसार को पार, संसार से पार। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तर आए भाव सुंदर से, ये भाव संसार से पार होने के लिए ये मनुष्य का देह बड़ा ही सार्थक है। प्रोम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम, और डायरेक्शन देने वाला बतलाने वाला गुरु वर्ग है। अभी तिरुपति में जीबीसी मीटिंग थी, वहां ये बात हो रही थी गुरु तत्व का। तो भानु महाराज बता रहे थे कि जीव को भगवान से संबंध जुड़ाने में पांच गुरु लोग लगते हैं, पांच गुरु हैं जो जीव को सम्मान भगवान तक ले जाते हैं। पहला जो गुरु है वह है पथ प्रदर्शक गुरु। जैसे ध्रुव महाराज के लिए उनकी माता सुनीति थी, बिलमंगल के लिए वो चिंतामणि। तो पहला जो है पथ प्रदर्शक गुरु, दूसरा शिक्षा गुरु, तीसरा दीक्षा गुरु, चौथा आचार्य गुरु और पांचवा चित्त गुरु परमात्मा। और यदि पांचों का संग होगा तभी उस जीव को कृष्ण स्वीकार करते हैं। दुख की बात है कि हम लोग केवल दीक्षा गुरु को ही ज्यादा महत्व देते हैं, अन्य लोग कहते हैं तो आप साइड में रहो, अभी वो शिक्षा गुरु पथ प्रदर्शक गुरु बाप माओं को भूल गए हम लोग। ये पांचों का भक्ति विनोद ठाकुर इस बात को हैं, ये पांचों का सहयोग होता है जीव को। तो गुरु कर्ण धारम, इस संसार को पार लगाने के लिए इन गुरुओं की जरूरत होती है, साधुओं की संगति की जरूरत होती है। और भगवान कृपा कर करके ये वैदिक शास्त्रों का रचना किए हैं। जो व्यक्ति सुखी होना चाहता है उसे चाहिए शास्त्रों का अध्ययन करे, शास्त्र में बताए गए बातों का अनुसरण करे। जो शास्त्र के विरुद्ध कार्य करता है, यह शास्त्र विद्धि मुत्सृज वर्तते काम कारत न स सिद्धि वाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्र के विधि विधान का पालन नहीं कर करके अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, भगवान कहते हैं न स सिद्धि वाप्नोति, वो सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है, न सुखम न सुख को प्राप्त करता है, न पराम गति और न तो परम गति को प्राप्त करता है। इसलिए भगवान सलाह देते हैं तस्मा शास्त्रम प्रमाणमते कार्य अकार्य व्यवस्थित हो। भगवान ने शास्त्र दिए हैं और शास्त्र को फेवरेबल विंड बताया गया है। तो मनुष्य का देह प्राप्त हो गया है जो नौका के समान है, नाव को खेने वाला खेवैया गुरु वर्ग है, और फेवरेबल विंड, फेवरेबल का अनुकूलित वायु भगवान के उपदेश हैं। ये सब प्राप्त करने के बाद भी यदि कोई पार नहीं करता है इस संसार सागर को, लब्ध्वापमान न तरेष आत्मा, ये सब प्राप्त करने के बाद भी कोई पार नहीं करता है तो आत्मघाती है, वो कसाई है। हम लोग क्यों नहीं पार करने का प्रयास करते हैं? आई मीन सोचने की बात है, ये खाना पीना सोना बाल बच्चा पैदा करना रक्षा करना सभी जोनियों में करते आए हैं, अरे एक जोनी तो कम से कम दीजिए। यह विश्वास नहीं हम लोगों को, हमको भी उतना विश्वास नहीं है, आप लोगों को ही नहीं, हमको भी विश्वास नहीं है। जिस दिन विश्वास हो जाए कि ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग कुत्ते और गद्दे के जीवन में मिल सकता है, उस दिन से हम उसके पीछे नहीं दौड़ेंगे। किसके पीछे दौड़ेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। आज हम में केवल श्रद्धा है, लेकिन यही श्रद्धा प्रगाढ़ होकर के विश्वास का रूप धारण करेगा। कब? जब सत्संग करेंगे तम आदो श्रद्धा। श्रद्धा शब्दे विश्वास कौ सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। विश्वास तब हो जाएगा जब श्रद्धा के साथ में हम साधुओं का संगति करें और हरि कथा सुने। तो भगवान कृपा करके स्मृति देते हैं कि देखो तूने क्या क्या किया है, और शॉर्टकट रास्ता है हरे कृष्ण वाला बन जाओ, लेकिन विश्वास ही नहीं हो रहा है। तो सत्संग के द्वारा विश्वास उत्पन्न होगा। तो आज का जो यह श्लोक है, इस श्लोक का मुख्य सार यही है कि जीव सातवें महीने से बिल्कुल पहले आया हुआ है और दुख में झंझरा गया है, और उस समय भगवान जो परमात्मा के रूप में है कृपा करके उसे याद दिलाए कि देख बेटा तूने क्या किया है, एक जन्म में नहीं सैकड़ों जन्मों में तूने क्या क्या किया है। तब जीव समझता अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, इतना तो मैं कर्म फल रख लिया हूं जो दुख का सार है, आगे क्या करूं? तो आगे क्या करूं वह जीव आगे बतलाया है। शिवाजी गोस्वामी बहुत सुंदर कमेंट्री दिए हैं श्लोक 12 के ऊपर कि किस प्रकार से जीव का उद्धार होगा और जीव क्या सोचता है। जो हम लोग कर रहे हैं यही हम लोग सोचे थे, मां के गर्भ में यही सोचे थे जो हम लोग कर रहे हैं, है? लेकिन दुख की बात है कि आज केवल श्रद्धा है, विश्वास नहीं है। विश्वास हो जाए तो कल्याण हो गया। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय।